सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनं सिद्धादद्धटमला विशुद्धबुद्धिये लथ सौवता तिहुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवन भवन पसरिय पच्छक्खवबोह किरण परिवेडो उयो वियणत्थवणो अरहंत दिवायरो जयहु किरयण खगणिहाये णुत्तारिय मोहसेन शिरणिवहो आयरिय राउ पशिवौ परिवालिय भविय जियलो अन्नानन्धयारे अणोरपारे भमन्त भवियाणम् उज्जो जेहि कौ पशियन्तु सया उवझाया दुहतिवति सा विनडिय तिहुवण भवियाण सुठुरायेण परिठविया धम्मपवा सुअजलवाणपयाणेन रियशीलहरा उत्तारिय चिरपमाद दुःशीलभरा साहू जयन्तु सव्वे शिवसुहपः सण्ठियाहु निकलिय भया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड वेदना खंड, उसमें कृति अनुयोग द्वार चल रहा है अपना। पृष्ठ संख्या 118 पर आ गए हम, 118। अब यहाँ हम बढ़ते आगे शंका समाधान में। कल ये बात हुई थी कि जैसे कषाय की हीनता पाई जाती है, किसी जीव में और ज़्यादा हीनता पाई जाती है, ऐसे होते होते कोई ऐसे जीव हो सकते हैं कि जो पूर्ण कषाय से रहित हो गए हैं, यानी पूर्ण वितराग। पहले सर्वज्ञ हो सकते हैं सिद्ध किया, ज्ञान की वृद्धि होते होते पूर्ण विकसित ज्ञान सिद्ध किया था। अब कहते हैं कषायों की हानि होते होते वो कर्म कलंक का पूर्ण नाश हो सकता है, कर्मों के द्वारा ही उन्होंने बताया था। अब शंका समाधान चलेगा। कर्म पूर्ण ज्ञान का आवरण करते हैं, क्योंकि आवरण का तारतम्य पाया जाता है, जैसे चंद्रमंडल को राहु मंडल। ऐसा भी यहाँ कहा जा सकता है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे ज्ञान पूर्ण वृद्धि होते होते पूर्ण रूप से विकसित ज्ञान भी पाया जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान की हीनता 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 होते होते बिल्कुल ज्ञान पूर्ण रूप से आवृत हो गया, यानी जीव को ज्ञान ही नहीं रहा। क्या आप क्या कहते, ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, समाधान, ऐसा अनुमान योग्य नहीं है। ये जो तर्क चल रहा है ये ठीक तर्क नहीं है, गलत है ये, क्योंकि ऐसा होने पर यावत द्रव्यभावी ज्ञान दर्शन के अभाव से, अपनी भाषा में नित्य तादात्म्य संबंध वाले ज्ञान दर्शन का अभाव हो जाएगा, जीव द्रव्य के भी अभाव होने का प्रसंग आता है, उसके गुणों का ही अभाव हो जाएगा, उसके गुण कोई प्रकट ही नहीं होंगे, पूर्ण रूप से आवृत हो जाएंगे, स्वभाव पूर्ण मिट जाएगा, तो उसके बिना जीव का भी अभाव होने का प्रसंग आएगा। और द्रव्य का अभाव होता नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर तीन लोक के अभाव का प्रसंग आता है। द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण नित्य है, द्रव्य भी नित्य है और सभी द्रव्यों के समूह ऐसा विश्व भी नित्य है। यदि गुण का अभाव मानेंगे तो द्रव्य का अभाव का प्रसंग होगा, और किसी एक भी द्रव्य के अभाव का प्रसंग आएगा तो पूरा लोक का अभाव का प्रसंग आएगा। इसलिए यह बात घटित नहीं होती, यानी ज्ञान को आवरण होते होते पूर्ण मिट जावे ऐसी बात कभी हो नहीं सकती। अतएव केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञानी, केवल दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शनी, मोहनीय के क्षय से वीतराग, अंतराय के क्षय से विघ्नों से रहित, अनंत बल से संयुक्त तथा अघात्या कर्मों को किंचित दग्ध करने वाला जीव कहीं पर भी है यह सिद्ध है। यानी ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता, यानी अरिहंत अवस्था वाला, ऐसे अगर किसी का मत है तो उसको यहाँ उसको निराकरण करते, उसका निराकरण करते हैं। क्या कहते हैं, हमने अभी देखा ना कि घातिया कर्मों का पूर्ण नाश हो गया है, उसको क्षय कहते हैं। तो ज्ञानावरण के क्षय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, दर्शनावरण के पूर्ण क्षय से दर्शनावरण उत्पन्न हुआ है, मोहनीय क्षय हो चुका है तो उसमें वीतराग है, पूर्ण वीतराग, और अनंत बल भी है, अंतराय ने विघ्न का भी पूर्ण अभाव हो गया है। और फिर कैसे, आघाती कर्म तो है फिर भी किस तरह से, किंचित दग्ध करने वाला, उसकी भी निरंतर निर्जरा चल रही है, आघातियों की भी, आघाती कर्मों में भी आयु तो एक एक निशेक ही गिरता है, उसमें तो कोई बात नहीं है कि संयम है या पूर्ण वितराग है इसलिए उसकी ज्यादा निर्जरा, ऐसी कोई बात होती नहीं आयु में। अन्य जो कर्म है, वेदनीय, नाम और गोत्र, उसकी भी वहां निर्जरा चल रही है, तो इसलिए किंचित दग्ध करने वाला कहा उसको। तो ऐसे जीव कहीं ना कहीं तो होते ही है, कहीं पर भी होते हैं, कहा ना यह सिद्ध है, तो कहां पर होते हैं ऐसे जीव, कहां पर पाए जाएंगे, पूरा लोक है हमारे सामने। तो ये अभी जो जिसका वर्णन किया, पेज नंबर 118 पर आए हम, समाधान की दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। तो ये अभी जो वर्णन हुआ तो पूरे लोक का, हाँ, ढाई द्वीप में, पहले मनुष्य क्षेत्र में सिद्ध किया, बराबर, मनुष्य क्षेत्र में भी कर्म भूमि में हो गए, भोग भूमि में नहीं हो गए। अभी ऐसे अरिहंत अवस्था वाला जीव अभी पंचम काल में यहाँ नहीं है, तो कहाँ हो गए, विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में भी वहाँ के जो आर्यखंड होते हैं वहाँ हो गए। उसका अभाव मानने वाले के लिए यह समाधान दे रहे हैं। और आवरण के क्षीण हो जाने पर आत्मा परिमित को ही जानता यह हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं, पहले तो आवरण था तब उसके जानने में मर्यादा थी, ये तो निमित्त की भाषा है, आवरण ने कुछ नहीं किया। ज्ञान तो जीव का अपना स्वभाव है और वो अपना स्वभाव पूर्ण विकास रूप से वहां है, तो आवरण बिल्कुल नहीं रहा, तो आवरण की तरफ से कथन है, आवरण की तरफ से ज्ञान होना नहीं होना ये निर्भर नहीं उस पर। तो जहां आवरण बिल्कुल नहीं है तो वहां भी निमित्त रूप से भी वहां कुछ है ही नहीं है, तो ज्ञान को रोकने के लिए परिमित यानी मर्यादा, लिमिट नहीं अभी उसको, अमर्यादित ज्ञान है, असीम ज्ञान है। केवल ज्ञान को कहते ना, उसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं उसको, स्वभाव ऐसा उसी को कहते हैं जिसको कोई मर्यादा नहीं होती। किसी भी वस्तु का स्वभाव क्यों नहीं, अभी आकाश में अवगाहनत्व गुण है तो उसमें कोई मर्यादा नहीं है, वो उसका स्वभाव है ना। तो इतने अनंत अनंत द्रव्यों को अवगाहना दिया फिर भी वो उसके अनंत वे भाग में समा गए सब। लोकाकाश ये पूरे आकाश द्रव्य का अनंतवा भाग है, लोकाकाश के बाहर अनंत 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 आकाश दसों दिशा में फैला हुआ है, तो उसने अवगाहना तो दी इतने अनंत अनंत द्रव्यों को, तो फिर भी वो कितने में आ गए, अनंत वे भाग में समा गए। तो उसकी शक्ति कितनी, अभी उससे भी अनंत गुणी पड़ी है उसमें शक्ति। वैसे यहाँ कहते हैं, आवरण के क्षीण हो जाने पर आत्मा परिमित को ही जानता ही नहीं हो सकता, उसका ज्ञान है। हाँ, परिमित यानी मर्यादा वाला, लिमिट वाला, सीमा वाला, क्योंकि प्रतिबंध से रहित अभी उसको प्रतिबंध कोई नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है उसके लिए। और समस्त पदार्थों के जानने रूप स्वभाव से संयुक्त, उसका स्वभाव ही सबको जानने का है। ये स्वभाव स्वाभाविक है उसका सबको जानना, और अभी स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है, तो सबका जानना उसका स्वभाव, सर्वज्ञता उसका तो स्वभाव ही है। स्वभाव से संयुक्त उसके परिमित पदार्थों के जानने का विरोध है, इसलिए केवल ज्ञानी सबको जानेंगे, उसमें कोई मर्यादा नहीं, ना द्रव्यों की संख्या की कोई लिमिट है, सभी द्रव्यों को जानेंगे, उनके सभी गुणों को जानेंगे, सभी पर्यायों को जानेंगे, वहाँ कोई काल की भी लिमिट नहीं है कि अभी वर्तमान को ही जानेंगे या भूत का जो हो चुका उसको जानेंगे, होने वाले को नहीं जानेंगे। ऐसी भी भ्रांति रहती है बहुत जीवों में कि सर्वज्ञ जो हो चुका है उसको तो जानेंगे, अभी जो हुआ ही नहीं है हमारे भविष्य की पर्याय वे कैसे जानेंगे, हम चाहे जैसे करेंगे, हमको लेफ्ट टर्न लेना है तो हम लेफ्ट लेंगे और भगवान ने राइट जाना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्याय निश्चित है, वो किसी दूसरे ने जानी इसलिए हुई ये भी नहीं है, और जो निश्चित है उसको केवल ज्ञानी जान रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही जान लिया, ये तो ज्ञान का महात्म्य है। हमें लगता है कि उन्होंने पहले जान लिया, ये हमारी पराधीनता हुई, पराधीनता नहीं हुई, हमारी एक एक पर्याय जो है वो स्वाधीनता से ही होने वाली है और हो रही है, उन्होंने अपने ज्ञान के स्वाधीनता से उसको जान लिया, ये ज्ञान का सामर्थ्य है, ख्याल है ना। तो हमें तो उसमें हम क्या करें, अभी हमारा कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा, ऐसी भ्रांति कर लेते हैं। पुरुषार्थ तो हर समय के पर्याय में लगता है, प्रत्येक पर्याय में पांचों ही समवाय लगते हैं, तो पुरुषार्थ से ही सारा होते हैं, परंतु हम राग के अधीन होकर इच्छा से कुछ कार्य हुआ तो पुरुषार्थ हुआ ऐसा मानते हैं। उसी को पुरुषार्थ मान लिया ना, कि अपनी अमुक इच्छा है, इच्छा तो विभाव है, तो वो कहाँ पुरुषार्थ रहा। तो कहते हैं, ये उपयोगी श्लोक यहां बता रहे, यानी मात्र भूतकाल को ही जानते ऐसी बात नहीं है, भविष्य की पर्यायों को भी जानते, क्षेत्र की भी उन्हें कोई मर्यादा नहीं, लिमिट नहीं है कि इतने क्षेत्र का ही जानेंगे, लोक और अलोक सब कुछ जान रहे हैं। हम ये श्लोक पढ़ेंगे, ज्ञो ज्ञेये कथम अज्ञ स्यात् असति प्रतिबंधरी, दाह्ये निर्दाहको न स्यात् असति प्रतिबंधरी। उसका अर्थ लिखते हैं, ज्ञान स्वभाव आत्मा प्रतिबंधक का अभाव होने पर, यहाँ प्रतिबंधक कर्म को कहा है, आवरण वाले कर्म को, ज्ञानावरण को यहाँ प्रतिबंधक कहा है, ज्ञान स्वभाव आत्मा प्रतिबंधक का अभाव होने पर ज्ञेय के विषय में ज्ञान रहित कैसे हो सकता है। ज्ञान तो उसका स्वभाव ही है और अभी प्रतिबंध भी कुछ है ही नहीं है, तो वो सभी ज्ञेयों को नहीं जानेगा ऐसा नहीं बन सकता। दो निगेटिव है ना, यानी सबको जाने ऐसा उसका स्वभाव है और वो जानता ही है, अर्थात नहीं हो सकता। उसके लिए दृष्टांत देकर समझाते हैं, क्या अग्नि प्रतिबंध के अभाव में दाह्य पदार्थ का दाहक नहीं होता, होता ही है। इसका अर्थ ख्याल में आता है, बड़ी आग लगी हो और उसका प्रतिबंध करने वाला कोई वहां फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ नहीं है, पानी नहीं डाल रहे या हम क्या क्या मिट्टी डालते हैं, रेती डालते हैं, अन्य उसको प्रतिबंध रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं। यदि अग्नि को रोकने वाला वहां कोई उपाय न हो तो जो दाहक, ये जो दाह्य जो दाह्य नहीं ईंधन, जलने योग्य, तो जलने योग्य को अग्नि जलाएगी ही जलाएगी, तो उसको जलाने में कोई रुकावट नहीं है, अभी कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर पढ़ते देखो, अग्नि प्रतिबंध के अभाव में दाह्य पदार्थ का यानी जलने योग्य पदार्थ का, नहीं जलने योग्य को नहीं लिया, वैसे यहाँ गेय को लिया है, तो जिसमें गेयता नहीं है, प्रमेयत्व नहीं है, ऐसे विश्व में कितने द्रव्य है, छह में से एक भी नहीं है, सभी प्रमेयत्व गुण वाले है, तो सभी में प्रमेयत्व है, तो सभी गेय है, तो उसके जानने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। तो दाह्य पदार्थ का दायक नहीं होता है, होता ही है। यह भी इस प्रकार के स्वरूप से संयुक्त वर्धमान भट्टारक ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके वचन युक्ति व शास्त्र से अविरुद्ध है। आगम से तो अविरुद्ध है ही है शास्त्र से, और युक्ति से, युक्ति यानी जो न्याय होते हैं ना, विशिष्ट न्याय से जो बात सिद्ध की जाती है, जैसे हमने देखा हेतु है, साधन है, साध्य है, कोई बात प्रूव करनी है हमको, सिद्ध करनी है, तो उसके लिए हेतु दिए जाते हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है, तो ये अलग अलग पद्धति से उसको सिद्ध करते हैं, उसको कहते हैं युक्ति। प्रमाण नय और निक्षेप से जाना उसको भी युक्ति कहते हैं, ऐसा भी आता है शास्त्र में, और शास्त्र से भी अविरुद्ध है। यहाँ उपयुक्त गाथाएं, ये बात कहाँ चल रही थी, ग्रंथ की और ग्रंथकर्ता के प्रमाणता की, ग्रंथकर्ता के प्रमाणता से वचन की प्रमाणता यहाँ सिद्ध हो रही है, वहां से ये सब बातें चल रही है अपनी। महावीर भगवान को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से यहाँ उसकी प्ररूपणा करके उनकी बात कैसे परम सत्य है ये बता रहे हैं, उसमें अभी ये उपयुक्त गाथा यहाँ कहेंगे। खीणे दंसन मोहे चरित मोहे तहे वघाइतिये सम्मत्त विरियणाने कहिए ते होंति जीवाणम। दर्शन मोह, चारित्र मोह तथा तीन अन्य अघातिया कर्मों के क्षीण हो जाने पर, अन्य क्या हुआ, कहाँ लिखा है, मैंने अघातिया पढ़ा क्या, अच्छा अन्य घातिया चाहिए, देखो ऊपर लिखा ना, खीणे दंसन मोहे चरित मोहे तहे वैने, उसी प्रकार घाई तीय, घाई ने घाती, तीय ने तीन, तीन घाती, तो दर्शन मोह, चारित्र मोह तथा तीन अन्य घातिया कर्मों के क्षीण हो जाने पर, क्षीण होना यानी क्षय होना, क्षीण होना यानी दुबला होना नहीं, परिपूर्ण उसका अभाव हो जाना, सत्ता में से नष्ट हो जाना, उसको यहाँ क्षीण होना कहा है। क्षीण होने पर जीवों के सम्यक्त्व वीर्य और ज्ञान रूप वे क्षायिक भाव होते हैं, जिन जिन कर्मों का क्षय हो चुका है वैसे उन्होंने उसके जो वहाँ प्रतिपक्ष वाले जिनके प्रतिपक्ष थे कर्म, ऐसे वो स्वभाव जो है, गुण जो है वो पूर्ण प्रकट होते हैं, उसको क्षायिक कहते हैं। तो क्षायिक ज्ञान कहेंगे, क्षायिक दर्शन कहेंगे, क्षायिक वीर्य कहेंगे, या उसको अनंत भी नाम देंगे, सम्यक्त्व वगैरह वगैरह। अब 28 नंबर के जो गाथा है उसको भी पढ़ते हैं। उपन्नम्यणन्ते नठम्यछादुमत्येणाणे देविन्द दानविन्दा करेन्ति महिमं जिनवरस। अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने पर उपन्नमि अनंते, अभी अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ, उत्पाद हुआ, किसी का तो व्यय होगा, व्यय किसका हुआ होगा, सर्वसमय ज्ञान का, छद्मस्थ अवस्था है ना, नठम्य छादुमत्येन आने, ये छद्मस्थ वाला ज्ञान वहां नष्ट हुआ, इसका व्यय हुआ और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। देखो अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने और छाद्मस्थिक ज्ञान के नष्ट हो जाने पर देवेंद्र और दानवेंद्र, देवेंद्र एवं दानवेंद्र जिनेंद्र देव की महिमा करते हैं। दानवेंद्र किसको कहा, हाँ, भवनवासी जो है उनके जो इंद्र है उसको दानवेंद्र कहते हैं। दानव असुर को भी कहते हैं, असुर कुमार भी वो भवनवासी का ही एक उसका यानी भेद है, तो उसको यहाँ दानवेंद्र कहा। देवेंद्र और दानवेंद्र जिनेंद्र देव की महिमा करते हैं। इस प्रकार से भाव से युक्त वर्धमान भट्टारक ने तीर्थ की उत्पत्ति की। अभी तक हम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल की बात नहीं अभी है, ये भाव से वर्धमान भट्टारक की जो प्ररूपणा यहाँ की है, उन्होंने तीर्थ की उत्पत्ति के ने उन्होंने उपदेश दिया था और वहाँ से ये प्रारंभ हुआ है, आगम वहाँ से चला आ रहा है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। अब द्रव्य, क्षेत्र और भाव की प्ररूपणाओं के संस्कारार्थ काल प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के भेद से काल दो प्रकार है। देखो ये सब यहाँ हमारे भरत क्षेत्र की अपेक्षा कथन हो रहा है, हम यहाँ के हैं ना, तो ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल का जो भेद है उसमें जो चक्र होते हैं पहला दूसरा से छह काल होते हैं, उसमें छह आरा कहने में आते ना, पहले से छठे तक, और फिर उत्सर्पिणी उल्टा छठे से पहले तक, ये तो एक के बाद एक चलता ही रहता है, जिसको कहते हैं वो कल्पकाल, पूरा मिलकर एक कल्पकाल होता है। वो कितने वर्षों का होता है पता है आपको? 20 कोड़ाकोड़ी सागर, उसमें 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पिणी और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पिणी। उसमें जो पहला काल है उत्तम भोग भूमि वाला, यहीं पर होता है, वो 4 कोड़ाकोड़ी का। फिर दूसरा काल 3 कोड़ाकोड़ी का, तीसरा 2 कोड़ाकोड़ी का, और एक कोड़ाकोड़ी बचा उसमें चौथा, पांचवा और छठा काल तीनों मिलकर एक कोड़ाकोड़ी सागर के होते हैं। पांचवा और छठा है वो 21,000 का है, और बाकी बचा हुआ वो चौथा काल रहता है। तो ये काल चक्र यहाँ भरत क्षेत्र की अपेक्षा बताने में आता है। विदेह में ऐसा वहां कोई, जहां विदेह है जहां कर्मभूमि वहां हमेशा ही कर्मभूमि ही है, यहाँ कैसे कभी भोग भूमि है, अभी वो पलट कर पहले के बाद दूसरा काल आया, फिर तीसरा आया, फिर यहीं पर चौथा काल शुरू हुआ, वहां हमेशा ही चौथे काल जैसी परिस्थिति बनी रहती है विदेह क्षेत्रों में। अब यहां हम देखते हैं अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के भेद से काल दो प्रकार है। जिस काल में बल, आयु व उच्छेद का, उच्छेद यानी हाइट, जीव की लंबाई कहो या ऊंचाई कहो, बल यानी शारीरिक बल भी यहाँ लेना, शारीरिक बल, आयु व उच्छेद का उत्सर्पण अर्थात वृद्धि होती है, वह उत्सर्पिणी काल है। जिस काल में उनकी हानि होती है वह अवसर्पिणी काल है। उनमें प्रत्येक सुखमा सुखमादिक के भेद से छह प्रकार का है। प्रत्येक यानी उत्सर्पिणी भी और अवसर्पिणी भी, प्रत्येक में छह छह भेद है। उनमें इस भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी के चतुर्थ दुखमा सुखमा काल में, ऊपर क्या लिखा था, सुखमा सुखमादिक, पहले काल जो है उत्तम भोग भूमि वाला तब उसको सुखमा सुखमा कहते हैं, दूसरा जो मध्यम भोग भूमि है तब उसको सुखमा कहते हैं, तीसरे काल को सुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा हुआ, फिर अभी चौथे में दुखमा सुखमा, पांचवे में दुखमा और छठे में दुखमा दुखमा, ये चौथे की बात कर रहे हैं। इस भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी के चतुर्थ दुखमा सुखमा काल में 9 दिन व 6 मासों से अधिक 33 वर्षों के शेष रहने पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई। चौथा काल समाप्त होने के पहले इतने दिन तीर्थ की उत्पत्ति हुई, यानी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि छूटी। कितने काल बाकी था? 33 वर्ष 6 मास और 9 दिन। क्या लिखा है? ये सारा ब्रैकेट में ही लिखा है हमारे यहाँ, वो आगे आगे के पेज पर लिखेंगे शायद। हाँ, ऊपर भी देखो ना, अयत 33 अवासा अवशेष से 33 6 और 9 लिखा है। अभी आगे कुछ अलग लिखेंगे तो देखते हैं। वो 15 आगे है। ठीक है, किसी पुस्तक में 15 भी लिखा है, कहा भी है आगे। अब ये ऊपर गाथा पहले पढ़ेंगे। इमिसे वसपिणिये चहुत्त काल सपश्चिमे भाये चौती सवास से किंचि विषे सुण कालम्मी। इसी अवसरपिणी के चतुर्थ काल के अंतिम भाग में, पश्चिमे भाये है ना, अंतिम भाग में कुछ कम 34 वर्ष प्रमाण। अब ये कुछ कम है, हमने अभी 33 फिर 6 और 9 देखे थे, ये कुछ कम में जो कुछ है वो जान लेना। तो कुछ कम 34 वर्ष प्रमाण काल के शेष रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई, यानी भगवान महावीर की वाणी छूटी सबसे पहला। अभी कौन से दिन छूटी? हाँ, उनकी भी वाणी खीरी थी, पर हमें जो उपदेश मिला है तो महावीर के द्वारा मिला है। हमारे जो आगम चले आ रहे हैं वो महावीर भगवान के द्वारा बताए हुए आगम है, तो हम उनको याद कर रहे हैं यहाँ पर। अभी महावीर का शासन काल कहलाता है, ये उनका अभी धर्म प्ररूपणा जो की तीर्थ की उत्पत्ति हुई अभी वो चल रही है। अभी आगे कुंद कुंद भी महावीर को याद करते, सीमंधर को नहीं, जो कि वहां 8 दिन जाके प्रत्यक्ष उनका दर्शन करके उनकी वाणी सुनकर आए थे, क्योंकि यहाँ का तीर्थ को जो चल रहा है वो महावीर भगवान का तीर्थ है, उसका शासन काल है और उनसे हमें ये आगम की प्राप्ति हुई है, इसलिए महावीर को यहाँ याद कर रहे हैं। वह इस प्रकार से 15 दिन और 8 मास अधिक 75 वर्ष चतुर्थ काल में शेष रहने पर, ये भगवान महावीर कभी गर्भ में आए उसकी बात कर रहे हैं, शेष रहने पर पुष्पोत्तर विमान से आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन 72 वर्ष प्रमाण आयु से युक्त 3 ज्ञान के धारक महावीर भगवान गर्भ में अवतीर्ण हुए। ये विमान कहाँ का था? ग्रेवेक का था, कहाँ का था ये? ये आई है बात, कहीं आएगी शायद आगे। कौन पुष्पोत्तर विमान ग्रेवेक में से है, कहाँ का है? महावीर भगवान कहाँ से आए थे? ठीक है, आगे आएगी शायद बात कहीं। देखो फिर इसको पढ़ती हूँ मैं। इस प्रकार से 15 दिन 8 मास अधिक 75 वर्ष चतुर्थ काल में शेष रहने पर, महावीर भगवान की आयु कितनी थी पता है? 72 वर्ष, यानी वे जब निर्वाण हुए इसमें से 72 माइनस कर दो, 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन, उसके बाद चतुर्थ काल समाप्त हुआ। उनके निर्वाण के पश्चात चतुर्थ काल समाप्त हुआ, इसलिए इतने दिन लिए। तो पुष्पोत्तर विमान से आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन 72 वर्ष प्रमाण आयु से युक्त और 3 ज्ञान के धारक महावीर भगवान गर्भ में अवतीर्ण हुए। आयु से युक्त ने यो जो आयु है पहले ही बांधी जाती है, यहाँ पर आकर आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा आपका भी ऐसा ही है, हम गर्भ में माता के आए थे तो पूर्व जन्म से जो कुछ आयु बांधी है उतनी फिक्स है। हमें बहुत आकुलता होती है कि उसको बढ़ाए, कहीं अमेरिका में जाए कोई ऑपरेशन करे बड़ा तो अपने आयु बढ़ जाएगी। आयु को टिकाने में बढ़ाने में हम लगे रहते हैं, यानी उतनी तो आकुलता कमी होने होगी ना कि समय से पहले मरेंगे नहीं, इतनी तो गारंटी है कि नहीं है? वो कहते समय तो अपने आप गारंटी हो।
इनका ऐसा कहना है, आप जो कह रही हैं कि जितने दिन जन्म आयु बाकी है जितना उतना तो जिएंगे कि नहीं, ये कह रहे इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो सम्यक तो हो जाएगा,
बिल्कुल गारंटी आई
तो सम्यक तो हो गया, ऐसा कहते।
तो भीति का नाश क्यों होता है? ऐसे तो होता है, भय नहीं रहा ना अभी कोई, मरण का भय सबसे बड़ा भय है।
सप्त भयों का नाश हो गया ना भाई, तो उसमें मरण भय भी आ गया, ये सब कोरिलेटेड है एक दूसरे से।
ये डॉक्टरों के पास लाइन क्यों लगती है? ये आकुलता से जाते हैं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती, वो बीमारी की तकलीफ इतनी होती नहीं होती, जो भय है ना उसके पीछे क्या होगा अपना, वो भय से ही भागते हैं सारे, 90% तो ऐसे ही होते हैं। देखो अभी ये जो गर्भ में अवतीर्ण हुई, इसमें 30 वर्ष कुमार काल, 30 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली थी ना, तो 30 वर्ष कुमार काल, 12 वर्ष उनका छद्मस्थ काल, तो क्या कुमार काल में छद्मस्थ नहीं थे? हाँ, तो 12 वर्ष उनका वो तो दीक्षा का काल, मुनि का काल, मुनि अवस्था। केवली काल भी 30 वर्ष, यानी पहले 30 फिर 12, 42 वर्ष के पश्चात, यानी तभी उनको केवल ज्ञान हुआ, और बाद में केवल ज्ञान होने पर 30 वर्ष उनका विहार वगैरह चला। इस प्रकार इन तीन कालों का योग, योग यानी जोड़, उसकी टोटल 72 वर्ष होते हैं। इनको 75 वर्षों में से कम करने पर, वर्धमान जिनेन्द्र के मुक्त होने हो जाने पर, जो शेष चतुर्थ काल रहता है उसका प्रमाण होता है। इसमें 66 दिन कम केवली काल के जोड़ने पर, 9 दिन और 6 मास अधिक 33 वर्ष चतुर्थ काल में शेष रहते हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था ना, 33 वर्ष 6 मास और 9 दिन, यानी उनका कितने अभी हमने देखे थे वो, देखो उनका जो केवली काल जो है, केवली काल यानी केवल ज्ञान होने पर जो काल है मुक्त होने तक का, उसमें से 66 दिन कम किए, 66 दिन कम किए उसमें से, और फिर बाकी जो बाद में तो वो तो है ही है, 66 दिन कम केवली काल के जोड़ने पर, किए हुए केवली काल का जोड़ने पर, ऐसा देखो 75 वर्षों में से कम करने पर है, तो शेष चतुर्थ काल रहता है। ये जो शेष चतुर्थ काल रहता है ना, यानी वो 3 वर्ष उतना ही बताया, उनके निर्वाण जाने पर कितना रह गया उसको बताया, अब उसमें फिर से वो जोड़ देते हैं। यानी हाँ, फिर दोबारा, हाँ शंका, ये आपको भी शंका आई कि नहीं आई प्रेरणा बेन, 66 दिन क्यों कम किए? हाँ दिव्य ध्वनि नहीं की रही थी 66 दिन तक, समोसरण की रचना तो अभी हमने इतना वर्णन पढ़ा ना, तो लोग आते भी थे वहाँ वाणी सुनने के लिए, फिर भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं छूटी थी। ये ऐसा पहले ही हुआ, ये कभी किसी तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये हुंडाव सर्पिणी में ये कहते हैं ऐसे कुछ बातें होती है ना, तो उसमें ये एक बात है, 66 दिन तक केवली की वाणी नहीं छूटी। देखो हुंडा यानी निकृष्ट, असंख्यात अवसर्पिणी के बीत जाने पर एक हुंडाव सर्पिणी काल आता है, उसमें ऐसी कोई बातें बनती है, जैसे चक्रवर्ती का मान भंग होना, भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था बाहुबली के द्वारा, तीर्थंकर को पुत्री होना, ऐसे ना अभी शलाका पुरुष भी कम हुए, उसी में रिपीटेड हुई, कोई चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, ऐसे नहीं, तीर्थंकर को पुत्री होना और धर्म का पूरा लोप हो जाना, ये भी अभी हुआ था ना, जैसे शांति गुण तो ये इनके बीच बीच में पूरा ही लोप, पल्ले जितने काल तक बीच में लोप हुआ था, धर्म रहा ही नहीं था यहाँ पर। ऐसी भी अनेक बातें हैं, वो तो इस काल में ऐसे होती। अभी जो आदिनाथ हुए तो तीसरे ही काल में हुए थे, चतुर्थ काल में होते ये तीसरे के अंत में हो गए थे। ऐसी कुछ बातें होती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु ऐसे निकृष्ट काल में हमें ऐसा उत्कृष्ट मार्ग अभी अवेलेबल है, नहीं तो हम वो काल के पीछे सोचते हैं ना तो ऐसा डिप्रेशन आता है क्या, अरे क्या करें ऐसा निकृष्ट काल, कुछ नहीं ऐसी बात। छठे काल में धर्म नहीं रहता, धर्म का लोप हो जाता है, उंडा हो या सादा हो। छठे की चिंता मत करना, हम वहां यहाँ रहने वाले नहीं है। देखो केवली शंका क्या पूछते हैं, केवली काल में 66 दिन कम किस लिए किए जाते हैं, उसका समाधान, क्योंकि केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उनमें तीर्थ को उत्पत्ति नहीं हुई। तीर्थ की पाइजे ना, की लिखा है ना, हाँ ओको हो गया गलती से, तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई। शंका, इन दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई, उसका समाधान, गणधर का अभाव होने से उक्त दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति नहीं हुई। हमेशा ये निमित्त के द्वारा कथन किया जाता है, उपादान में वैसी योग्यता ही नहीं थी, किसकी, भगवान महावीर की, वाणी की, हाँ। नहीं तो एक निमित्त छोड़कर दूसरे निमित्त को नहीं पकड़ना, तो इसलिए वो गणधर के अभाव रूप निमित्त की बात बताएंगे। वहां कार्य होता है तो निमित्त भी हाजिर होता ही है, बराबर, निमित्त कुछ नहीं करता है, उसकी सहज उपस्थिति रहती है, परंतु यहाँ कथन जो होता है वो निमित्त की, जैसे सिद्ध भगवान वहां पर ही क्यों इस अंतिम वात वलय में ऊपर क्यों नहीं गए, तो वहां क्या कहते हैं, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से, वो निमित्त के द्वारा कथन किया जाता है, उनकी योग्यता ही वहां रहने की है, ये मूल योग्यता को ख्याल रखकर निमित्त की बात बताई जाती है। शंका, सौधर्म इंद्र ने उसी क्षण में ही गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया, ये निमित्त का कथन करने वाले होते हैं ना, अरे वो गणधर नहीं थे, फिर इंद्र गया और उनको ले आया, तब वाणी छूटी, अरे इतना इंद्र ही जाके ले आ सकता था तो पहले जाना था ना, तो अवधि ज्ञान से पहले क्यों नहीं जाना कि वो 66 दिन तक नहीं खिरने वाले और इन गौतम गंधर्व के ही निमित्त से खिरेगी, तो पहले क्यों नहीं गए। समाधान, नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र। ये जो सारी बातें बनती है अपने अपने काल में ही, अपनी अपनी वो जो कुछ पर्याय बनती है, इंद्र की भी उसी काल में ऐसा विकल्प होगा, वो भी निमित्त रूप से लेना हो। और फिर वो जो कथा तो आपको मालूम है, जाके प्रश्न पूछे गौतम को, वो तो इंद्रभूति वायुभूति अग्निभूति नाम के तीन वैदिक साधु थे, 500-500 उनके शिष्य थे और बहुत महान कहलाते थे अपने फील्ड में उन। और अभी अवधि ज्ञान से तो ये जाना कि ये पात्र जीव है, इसके निमित्त से होने वाला है, तो गए और पूछा कि मुझे ये प्रश्नों के उत्तर मेरे गुरु के नहीं आ रहे, तो क्या प्रश्न पूछे थे उन्होंने बात पता है, ये 5 अस्थिकाएं 6 द्रव्य और 9 पदार्थ क्या होते हैं। आप कहेंगे अरे हमको भी मालूम है, उसको मालूम नहीं था, तो उसको भी नहीं मालूम था। तो उसने कहा मैं आपको क्यों, पर मैं आपके गुरु से ही चर्चा करूंगा, क्योंकि मालूम नहीं ऐसे बताना ठीक नहीं ना। तो फिर आगे वो समोचरण की रचना तो हुई थी, वहां आए मानस सम को देखा, मान गल गया, फिर भगवान के वहां गए, दीक्षा ले ली वगैरह वगैरह बात। देखो क्योंकि काल लब्धि के बिना, अब ये काल लब्धि नाम का एक समवाय लेकर कथन किया है, पांचों ही समवाय एक साथ होते ही है, किसी समवाय की अपेक्षा से कर्षण करेंगे तो यहाँ लिखा है काल लब्धि के बिना वो नहीं कर सकता था। तो काल लब्धि नाम की कोई वस्तु नहीं कि कहां से जाके ले आवे, जिस समय काल कार्य होता है उसी को तो काल लब्धि कहते हैं। तो काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। क्या हुआ, कोई बात, आप सुनना बराबर। हाँ, उस समय अभाव था। शंका, अब शंकाकार फिर पूछते, अपने पादमूल में महाव्रत को स्वीकार करने वाले को छोड़ अन्य का उद्देश्य कर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त होती? ये तो उसने नियम भी बताया। हाँ, मैंने भी पहली बार सुना कि जो उन्हीं के पादमूल में दीक्षा ग्रहण करता है, यह लिखा ना, अपने पादमूल में महाव्रत को स्वीकार करने वाले को छोड़कर अन्य के उद्देश्य से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त होती? उस समय पहले के मुनि कोई होगे कि नहीं होगे, इसलिए प्रश्न पूछा। अपने ने वो तीर्थंकर के पादमूल में, अभी गौतम गणधर ने दीक्षा कहाँ ली, भगवान के पादमूल में। क्या, हाँ, गणधर वहां दीक्षा लेते हैं, ऐसा अर्थ हुआ इसमें। ये प्रश्न से ख्याल में आता है, ये मुझे भी ये बात नहीं थी, ऐसा उन्होंने शंका पूछी है। नहीं, उसका अर्थ क्या होता है, उनके पादमूल में महाव्रत को ग्रहण करने वाले के ही निमित्त से वो वाणी छूटेगी, यानी वो भगवान ही उनके दीक्षा गुरु कहलाएंगे। अभी वो देते तो है ही नहीं है, वो जाकर वहां ग्रहण करते हैं। समाधान में भी ऐसा ही कहा, नहीं होती क्योंकि ऐसा स्वभाव है, यानी ये नियम नक्की हुआ ना कि जिसने तीर्थंकर के सामने दीक्षा ग्रहण की है, महाव्रत को स्वीकार किया है, महाव्रत भी ग्रहण करेंगे, अंतर्मुद में सब कुछ होगा, उनके मन परे ज्ञान वगैरह वगैरह सब प्रकट होगा, चारों ज्ञान के धारी होते हैं ना वे, ये कितनी रिद्धियां वगैरह उतने अंतर्मुहूर्त में उनके प्रकट होगी। ये हमने कितनी रिद्धियों के नाम देखे थे, तप घोर तप वगैरह वगैरह, ये सब उनके प्रकट हो जाएगी। वही तो मैं बता रही हूँ कि वे तभी प्रकट होगी दीक्षा देने के बाद, वहीं पर। देखो, ऐसा स्वभाव है, और स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर अव्यवस्था होती है। जो स्वभाव है उसका स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। क्यों ऐसा हर बार वो क्यों का उत्तर नहीं समझ में आता। इस कारण चतुर्थ काल में कुछ कम 34 वर्ष शेष रहने पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई, यह सिद्ध है। अन्य कितने ही आचार्य 5 दिन और 8 मासों से कम 72 वर्ष प्रमाण वर्धमान जिनेन्द्र की आयु बतलाते हैं, यानी 71 वर्ष 3 मास और 25 दिन। उनके अभिप्रायानुसार गर्भस्थ, कुमार, छद्मस्थ और केवल ज्ञान के कालों की प्ररूपणा करते हैं। ये जो दूसरा मत है उनकी अपेक्षा से इसका वर्णन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन कुंडलपुर नगर के अधिपति नाथवंशी सिद्धार्थ नरेंद्र की त्रिशला देवी के गर्भ में आकर, ये आकार हुआ है उसको, आकर और वहां 8 दिन अधिक 9 मास रहकर चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गर्भ से बाहर आए, यानी उनका जन्म हुआ। यहां आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को आदि करके पूर्णिमा तक 10 दिन होते हैं, पुनः श्रावण मास को आदि करके 8 मास गर्भ में बिताकर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उत्पन्न हुए थे, अतः 28 दिन चैत्र मास में प्राप्त होते हैं। इनको पूर्वोक्त 10 दिनों में मिला देने पर 8 दिन सहित 1 मास प्राप्त होता है। उसे 8 मासों में मिलाने पर 8 दिन अधिक 9 मास गर्भस्थ काल होता है। उसकी संदृष्टि नौ मास आठ दिन, यहाँ उपयुक्त गाथाएं। अच्युत कल्प, मैंने प्रश्न पूछा है पुष्पोत्तर विमान कहाँ का है, ये अच्युत वाला है। ये विमानों के नाम होते हैं ना वहां के, तो अच्युत कल्प, अच्युत तो विमान का नाम है पूरा ही, अच्युत कल्प कहा जाता है। अच्युत कितने नंबर का है? आनत प्राणत आरण अच्युत सोलवा, तो सोलवे स्वर्ग में बहुत सारे विमान है, उसमें से हमने वो पुष्पोत्तर विमान देखा था। पुष्पोत्तर ये उस विशिष्ट विमान का नाम है। हम गाथा पढ़ेंगे सुर, हाँ दो एक साथ है, अच्छा। सुर महिदोच्युत कप्पे भोगम दिव्वाणु भागम अनुभूदो फुफुतरणामादो विमान दोजो जुदो संतो बाहत्तरिवासानिय थोव विहूणानि लद्ध परमाहु आषाण जोन्न पक्खे छठी ए जोणि मुव यादो। इसको अर्थ पढ़ते हैं। वर्धमान भगवान अच्युत कल्प में देवों से पूजित हो, दिव्य प्रभाव से संयुक्त भोगों का अनुभव कर, पुनः पुष्पोत्तर नामक विमान से च्युत होकर, च्युत होना यानी वहाँ से वो नीचे आते हैं ना, इसलिए च्युत होना कहते हैं, नीचे मनुष्य में जन्म लेते हैं। कुछ कम 72 वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करके करते हुए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन योनि को प्राप्त हुए अर्थात गर्भ में आए। उसमें भी क्या किया, अच्युत कल्प में देवों से पूजित हो, देवों को भी पता है ना अवधि ज्ञान के तीर्थंकर होने वाले जीव है, तो वहां भी उनके पूजन है ना, विशिष्ट सत्कार आदि किए जाते हैं। हाँ अभी अवधि ज्ञानी है ना, उन्हें भी पता चलेगा, अन्य को भी पता चलेगा। अब आगे 28-29 साथ में पढ़ेंगे। कुंडपुर पुर वरिसर सिद्ध तत्कत्यस्त नाहकुले तिसिलाए देवी ए देवी सदसेवमानाए अच्छित्ताणव मासे अठय दिवसे चैत्यसिय पखे तेरसिये रत्तिये जादुत्तर फगुणी एदु। तत्पश्चात कुंडपुर रूप, हम कुंडलपुर भी कहते उसको, यहाँ कुंडपुर लिखा है, कुंडपुर रूप उत्तमपुर के नरपति, नरपति यानी राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय के नाथ कुल में, वो क्षत्रिय वंश था ना, क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये चार तो वर्ण कहलाते हैं, उसमें क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए। तो सिद्धार्थ राजा जो है, नरपति सिद्धार्थ ने राजा सिद्धार्थ नाथ कुल में, उनके कुल का नाम नाथ है, नाथ कुल में सैकड़ों देवियों से सेव्यमान त्रिशला देवी के गर्भ में, ये माता की सेवा करने देवियां आती है तो सैकड़ों देवियों से सेव्यमान यानी जिनकी सेवा की जाती है, ऐसे त्रिशला माता के गर्भ में, त्रिशला देवी के गर्भ में 9 मास और 8 दिन रहकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी की रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए। इस प्रकार गर्भस्थित काल की प्ररूपणा की है, गर्भ में आए और गर्भ में कितने दिन रहे वो गर्भस्थित काल। अब आगे कुमार काल को कहेंगे। अब यहाँ एक एक गाथा पढ़ेंगे ना, नहीं दोनों एक साथ है, बाद में गाथा, अच्छा। अब कुमार काल को कहते हैं चैत्र मास के 2 दिन। देखो यहाँ ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार बात है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ है महावीर भगवान का, तो शुक्ल पक्ष के 2 दिन बाकी रहे, 14 और पूर्णिमा, तो यहाँ चैत्र मास उन्होंने समाप्त कर दिया। हम जिसको चैत्र कृष्ण कहते हैं उसको हिंदी भाषी कभी वहां वैशाख कृष्ण कहते हैं। हाँ, शुक्ल कैसे कहेंगे कृष्ण को? कृष्ण को कृष्ण ही कहते, शुक्ल पक्ष दोनों का समान रहता है। हाँ, क्योंकि वो अद्धामासी, अमावस्या को अद्धामासी कहते हैं और पूर्णिमा को पूर्णमासी कहते हैं। उनका चैत्र महीना पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। जिसको हम चैत्र कृष्ण कहते हैं उसी को वो अगले महीने का कृष्ण पक्ष कहेंगे, यानी वहाँ उनकी वैशाख कृष्ण शुरू हो जाएगी, फिर 15 दिन के बाद उनका वैशाख शुक्ल शुरू होगा, जब हम भी वैशाख शुक्ल कहेंगे। यानी पहले शुक्ल पक्ष में तो हिंदी भाषा को मराठी गुजराती वो सबका एक समान रहता है कैलेंडर। जिसको हम चैत्र कृष्ण पक्ष कहते हैं उसी को वे वैशाख कृष्ण कहते हैं। उनका कृष्ण पहले आता है और शुक्ल बाद में आता है, इसलिए यहाँ चैत्र मास के 2 दिन गिने। कन्फ्यूजन नहीं करना, कृष्ण पक्ष उनका उस नाम में अलग है। हाँ, आगे वाला उनका कृष्ण पक्ष पहले ही शुरू होता है, शुक्ल में कोई तफावत नहीं है। चैत्र शुक्ल को वे भी चैत्र शुक्ल ही कहेंगे। तो चैत्र मास के 2 दिन वैशाख को आदि लेकर 28 वर्ष, पुनः वैशाख को आदि करके कार्तिक तक 7 मास को कुमार स्वरूप से बिताकर पश्चात मगसिर कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दीक्षार्थ निकले थे। अभी मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी हमारी कौन सी होगी? हाँ, क्या दशमी? हाँ, कार्तिक कृष्ण दशमी, क्योंकि उनकी वो आगे वाली आ गई ना, मार्गशीर्ष वाली। दीक्षार्थ निकले थे, अतः इस काल का प्रमाण 12 दिन और 7 मास अधिक 28 वर्ष होता है, तो 28 वर्ष 7 मास 12 दिन यहाँ उपयुक्त गाथाएं। अब ये हम गाथाएं दोनों एक साथ पढ़ेंगे। मणुवत्तन सुह मौलम देवकयम सेवी ऊणवासाइम 28 सत्तय मासे दिवसे यवारसयम् आहिणि बोहिय बुद्धो छठेण यमगसी स बहुलेदु दशमीयेणिखन्तो सुरमहिदोणिखमणपुच्चो। वर्धमान स्वामी 28 वर्ष 7 मास और 12 दिन देवकृत श्रेष्ठ मानुषिक सुख का सेवन करके, क्या कहते हैं ऊपर लिखा ना, देवकयम सेवी ऊण क्या सुहम। हाँ, यानी देवकृत श्रेष्ठ मानुषिक सुख का सेवन। देवकृत सुख क्यों कहा? वो उनके वो कपड़े भी वहां से देवों से आते हैं, देव उनकी सेवा भी करते आदि आदि, तो देवों से उत्पन्न ये मानुषिक सुख, मनुष्य के योग्य ऐसा सुख, उसका सेवन करके आभिनिबोधिक ज्ञान से प्रबुद्ध होते हुए षष्ठोपवास के साथ मगसिर कृष्ण दशमी के दिन गृह त्याग करके, षष्ठोपवास के साथ यानी 6 उपवास करके। हाँ, क्या छह उपवास को ही कहेंगे? छह उपवास कहे वो दो है ना, कितने भोजन उन्होंने नहीं लिए उसकी अपेक्षा कहते होंगे। क्योंकि क्या है, देखो ये 6 क्यों कहते हैं, 2 उपवास को 6 क्यों कहेंगे? 2 दिन के 4 हो गए, धारणा का 1, धारणा के दिन, धारणा ने पहला दिन, जैसे 8 और 9 2 उपवास किए, तो सप्तमी को एकासन करेंगे,
तो सप्तमी का एक भोजन नहीं लिया, अष्टमी और नवमी के दो दो यानी पांच हुए, और पारणा जो है उस दिन भी एक नहीं लेंगे, उस दिन भी एक ही लेंगे, इसलिए ये छह उपवास कहलाते हैं। अब यहाँ मासोपवासी पक्षोपवासी वो तो उतने ही उपवास गिनेंगे। हाँ, तो षष्ठोपवास के साथ मगसिर कृष्ण दशमी के दिन ग्रह त्याग करके सुरकृत महिमा का अनुभव कर, सुरकृत महिमा यानी देवों के द्वारा जो महिमा यानी कल्याणक होते हैं ना, दीक्षा कल्याणक होता है महिमा यानी वो उसकी विशेष उत्सव मनाते हैं, कल्याणक करते हैं, पूजा करते हैं, दीक्षा कल्याणक की भी पूजा होती है। ये हम तो यहाँ तो उसकी नकल करते हैं पंच कल्याणकों में, जिनको इंद्र बनाया है वे भी वो सारे ही वो अर्घ्य करेंगे, वो उनकी पूजा करेंगे, परंतु यथार्थ में क्या होता है, जब कोई तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा लेता है तब देव आकर उसका उत्सव मनाते हैं, तो उनकी पूजाएं भी की जाती हैं, तो उसको कहते हैं महिमा क्रिया। सुरकृत यानी देवकृत, देवों द्वारा पूजा होती है उनकी, उसका अनुभव कर, तप कल्याण द्वारा पूज्य हुए, ये लोगों को कल्याण में निमित्त है इसलिए उसको कल्याणक कहते हैं। ये वो पूजा करने से उनका कुछ नहीं कल्याण होता है, उनके तो कोई पूजा करे या कोई नहीं उनकी बात भी माने तो उनकी कोई लेना देना, मुनि है वो। अब इस प्रकार कुमार काल की प्ररूपना की है। अब छद्मस्थ काल कहते, छद्मस्थ काल ने अभी उनका जो मुनि अवस्था का काल उसको यहाँ छद्मस्थ काल कहा, वह इस प्रकार है। मगसिर कृष्ण पक्ष की एकादशी को आदि करके मगसिर की पूर्णता पूर्णिमा तक 20 दिन, दशमी के आगे गिनना है ना, इसलिए ये 20 दिन। पुनः पौष मास को आदि करके 12 वर्ष, पुनः उसी मास को आदि करके 4 मास, और वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तक वैशाख के 25 दिनों को छद्मस्थ रूप से स्वरूप से बिताकर वैशाख शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन, ये केवल ज्ञान का दिन बताया, वैशाख शुक्ल दशमी, रुजुकुला नदी के तीर पर जुरुम्बिका ग्राम के बाहर षष्ठोपवास के साथ शिलापट्ट पर आतापन योग के साथ अपराह्न काल में पाद परिमित छाया के होने पर, अपराह्न यानी दोपहर का, पाद परिमित यानी छाया कब होगी, अपने पाँव पाँव पर ही पड़ेगी छाया, आजू बाजू में नहीं, जब सूर्य एकदम ऊपर आएगा तब। केवल ज्ञान उत्पन्न किया इसलिए इस काल का प्रमाण 15 दिन 5 मास अधिक 12 वर्ष होता है, यहाँ उपयुक्त आता है। ये दूसरा जो मत है उसके अकॉर्डिंगली ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जो मानते आए थे या सुन के रखा है वो तो सुबह 6 बजे के जल्दी तब उनको हुआ था निर्वाण, सॉरी, ये केवल ज्ञान की बात करें, हाँ मैंने उसके साथ घोटाला किया, वो निर्वाण की बात है सुबह सुबह जल्दी। फिर भी ये 12 वर्ष 5 मास और 15 दिन बता रहे ना, हमने तो पहले 12 वर्ष वाला देखा था प्रमाण, ये जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं यहाँ पर। नहीं उन्होंने क्या लिखा था पहले, ये पेज नंबर 121 पर, 21 जो कोई 71 वर्ष 3 मास और 25 दिन की आयु बताते हैं वह इस प्रकार है ऐसा लिखा है, और उसकी बात अभी हम ले रहे हैं। हाँ, अब छद्मस्थ काल की प्ररूपना की। अब केवल काल कहते हैं, क्या हुआ, अच्छा ये उपयुक्त गाथाएं पढ़नी रहेगी। हाँ हम अभी पढ़ेंगे 32, 33 और 34, तीनों एक साथ पढ़ेंगे, तीनों का एक साथ नीचे अर्थ किया है ना, इसलिए गमय छदुमत्तम बारसवासाणि पंचमासेय पन्नरसाणि दिनानि तिरयण शुद्धो महावीरो उजुकूल नदी तीरे जंबिय गामे बहिं सिलावट्टे छठेनादाविन्तो अवरण्ये पाय छायाए वैसाह जोड़न पखे दशमी एकवगसेडी मारूडो हंतूण घाई कम्मं केवल नाणम समावन्नो। अब ये प्राकृत का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझता होगा ना, क्या नहीं थोड़ा? ये देखो नीचे वैसाह जोड़न पखे, वैशाख शुक्ल पक्ष में दशमी है, खवग सेड़ी मारूढ़ो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर हंतुण घाई कम्मम घाती कर्मों का नाश करके केवल नाणम समावन्नो केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे हर एक का अर्थ थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आने लगा है। देखो अर्थ नीचे पढ़ते, रत्नत्रय से विशुद्ध महावीर भगवान ने 12 वर्ष 5 मास और 15 दिन छद्मस्थ अवस्था में बिताकर रुजुकुला नदी के तीर पर जुम्भिका ग्राम में बाहर शिलापट्ट पर षष्ठोपवास के साथ आतापन योग युक्त होते हुए अपराह्न काल में पाद परिमित छाया के होने पर वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इस प्रकार छद्मस्थ काल की प्ररूपणा की। अब केवल काल कहते हैं वह इस प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को आदि करके पूर्णिमा तक 5 दिन, ये दिन गिना रहे अभी। फिर पुनः ज्येष्ठ से लेकर 29 वर्ष उसी मास को आदि करके आसोज तक 5 मास, पुनः कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14 दिनों को भी केवल ज्ञान के साथ यहाँ बिताकर मुक्ति को प्राप्त हुए। अमावस्या के दिन है ना, उसको कार्तिक कहते हैं, हम अश्विन अमावस्या कहते हैं। बात तो दिन तो उतने ही हो गए, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंगली दिन तो बढ़ेंगे नहीं, दिन तो वही है। उसको कृष्ण कहना, कार्तिक कहना के अश्विन कहना, इसमें ही डिफरेंस है। चूंकि अमावस्या के दिन सब देवेंद्रों ने परिनिर्वाण पूजा की थी, अतः उस दिन को भी इसी में मिलाने पर 15 दिन होते हैं। इस कारण इसका प्रमाण 20 दिन और 5 मास अधिक 29 वर्ष मात्र होता है। यहाँ उपयुक्त गाथाएं, ये 35-36 एक साथ पढ़ेंगे। वासाणुणतीसम पंचय मासे अभीस दिवसेय चौविहणगारे हिम बारह ही गणे ही विहरंतो पच्छा पावाणय रे कत्तिय मासे यकिन्न चौदसिये सादिये रत्तिये सेसरयं छेत्तुनिवाणो। भगवान महावीर 29 वर्ष 5 मास और 20 दिन चार प्रकार के अनगारों व 12 गणों के साथ विहार करते हुए पश्चात पावानगर में कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में रात्रि को शेष रज अर्थात अघातिया कर्मों को नष्ट करके मुक्त हुए। ये रात्रि का अंतिम प्रहर लेना उसमें, वो उसकी चतुर्दशी की रात्रि कहलाएंगे। सूरज उगने पर यहाँ दिन जो तिथियां जो गिनने में आती है, हम रात को 12 बजे नहीं बदलती। सूर्योदय होने पर उसको अगली तिथि कहेंगे। तो क्या किया उसमें, क्योंकि हम अमावस्या को मनाते हैं ना, और उनकी पूजा भी अमावस्या को ही हुई थी, तो अमावस्या की अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं 6 बजे के भी पहले, तो स्वाति वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग उसका टाइम समझ में आता है। फिर देखो अमावस्या को हम मनाते हैं ना, हाँ, और यहाँ लिखा है चतुर्दशी को, परंतु चतुर्दशी की रात्रि यानी चतुर्दशी और अमावस्या के बीच वाली रात्रि, और उसमें भी रात्र समाप्त होने के उस टाइम उनको निर्वाण हुआ। सुबह जल्दी, हाँ जल्दी, क्योंकि मुझे तो याद है बचपन में हम 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे, हाँ 5:55 तो मंदिरों में तो हम उसी वक्त वो जाके पूजा करना वगैरह करते थे 6 बजे। हाँ 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 अमावस्या जो जिसको हम दिवाली का दिन कहते हैं, हाँ उसकी जो अमावस्या के दिन, आप दिवाली किसको कहते हैं, अमावस्या को कहते हैं कि प्रतिपदा को, पाड़वा को कहते हैं? अमावस्या को ही अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कहेंगे, यानी सूर्योदय के पहले। हाँ चलो चलो, चार क्या, चार अनकारो यानी चार प्रकार, ये हमने ऋषियों के वगैरह ऋषि मुनि यति वगैरह भेद, हाँ अनकार मुनि चार प्रकार के मुनि, चार प्रकार वही ना ऋषि यति मुनि और अनकार, ऐसा वो चार प्रकार होते हैं। नहीं 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 वो नहीं 12 गण, अभी इसमें वो 12 सभा भी हो सकते हैं, गण यानी समूह, नहीं 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 गणधरों की संख्या अलग अलग होती है हर एक तीर्थंकरों की, गणधर नहीं 12, नहीं 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 महावीर के बहुत सारे गणधर थे, ये तीनों भाई तो थे ही ना, और भी अन्य थे, महावीर के कितने गणधर थे, 12 थे, अच्छा तो फिर ये गणों के साथ है ना उसको भी, या फिर 12 सभा भी, परंतु सभा तो उनके साथ विहार नहीं होगा ना, अभी गण यानी गणधर भी हो सकते हैं, हाँ 12 गणों के साथ विहार करते हुए पश्चात, परंतु कितने गणधर हो तो पहले मोक्ष गए होंगे ना उसमें, क्या नहीं ऐसा नहीं कि कितने गणधर पहले, अभी आदिनाथ के उनके गणधर तो जाते रहे और फिर नए नए होते हैं, उनका जितना काल चलेगा केवली काल ये समोचरण का, तो कितने गणधर मोक्ष चले जाएंगे उनके पहले, उनके बाद गौतम गणधर गए जिस दिन, हाँ क्योंकि जिस दिन उन्हें केवल मुक्ति हुई निर्वाण हुआ महावीर को, उसी शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, 12 वर्ष के बाद उन्हें निर्वाण हुआ, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए ना, सुधर्म फिर जम्बू स्वामी 12 वर्ष के, और वो साकल की तरह इनको मुक्ति हुई तो दूसरे को केवल ज्ञान हुआ, उनको मुक्ति हुई तो उनको केवल ज्ञान हुआ, नहीं वो वहाँ के चतुर्थ काल के जीव थे उनको मोक्ष पंचम काल में हुआ है, हाँ परंतु वो पंचम काल के जीव नहीं थे ना,
उम्र में तो वो महावीर स्वामी से बड़े थे, उम्र
पता नहीं अभी मुझे,
हाँ
अभी हो सकता है कम ऐसे कोई, हाँ ये हमने पढ़ा ना अभी 12 गणों के साथ वगैरह ही, इस प्रकार केवल ज्ञान की प्ररूपणा की। अब 37 नंबर का परिण्यू दे जिणिंदे चहुत्थ कालस्य जम्भवे शेषम वासाणि तिन्निमा विपन्न रसा। महावीर जिनेन्द्र के मुक्त होने पर चतुर्थ काल का जो शेष है वह 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन प्रमाण है। ये जो आप 15 की बात कर रहे हैं ना, ये द्वितीय मत की पूरी प्ररूपणा की उसके अकॉर्डिंगली। अब भगवान महावीर के निर्वाणगत दिन से, निर्वाणगत यानी जिस दिन उनके निर्वाण हुआ वहां से लेकर कार्तिक मास में 15 दिन, मगसिर को आदि लेकर 3 वर्ष 8 मासों के बीतने पर श्रावण मास की प्रतिपदा के दिन दुखमा काल अवतीर्ण हुआ। ये श्रावण मास की प्रतिपदा ने कौन सी लेनी अभी बोलो। हाँ, क्योंकि उनका कृष्ण पहले होता है तो वो श्रावण कृष्ण कहेंगे, तो हमारी कौन सी रहेगी, आषाढ़ कृष्ण एकम। इस काल को वर्धमान जिनेन्द्र की आयु में मिला देने पर 10 दिन अधिक 75 वर्ष मात्र चतुर्थ काल के शेष रहने पर वर्धमान जिनेन्द्र के स्वर्ग से अवतीर्ण होने का काल होता है। ये 2 उपदेश दिए ना, ये पूरा ही दूसरा उपदेश अभी हमने देखा, ये कुमार काल गर्भकाल वगैरह वगैरह उसको उनको, और उसके लिए उन्होंने उद्धृत गाथाएं भी बता दी। उक्त 2 उपदेशों में, अभी ये दोनों ही उपदेश हमने पढ़े, इसमें कौन सा उपदेश यथार्थ है इस विषय में एलाचार्य का शिष्य अपनी जीव नहीं चलाता, यानी स्वयं वीरसेन आचार्य कह रहे, वो अपने को एलाचार्य का शिष्य कह रहे, अपना नाम लेकर नहीं कुछ बताया। तो कहते हैं यह एलाचार्य का शिष्य यानी वीरसेन स्वामी अपनी जीव नहीं चलाता, अर्थात कुछ नहीं कहता, क्योंकि न तो इस विषय का कोई उपदेश प्राप्त है और न 2 में से 1 में कोई बाधा ही उत्पन्न होती है। वो मानने नहीं मानने से कोई बाधा तो है ही नहीं है, 2 उपदेश है उसका 2 तरीके से स्वीकार करो, किंतु दोनों में से 1 ही सत्य होना चाहिए, उसे जानकर कहना उचित है। सत्य तो 1 ही होगा कोई, उसका जो कुछ काल है निश्चित, परंतु उपदेश 2 चले आए रहे तो उसमें से यही सत्य ऐसा वो स्वयं तो नहीं कह सकते हैं, ये बात बताती। ये वे भी स्वयं आचार्य है फिर भी इतना विवेक तो है उनके पास। इस प्रकार अर्थकर्ता की प्ररूपणा की, ये कहाँ से चल रहे हैं, ग्रंथ के आदि में जो बातें बताई जाती है 6 बातें, उसमें 107 पृष्ठ पर हमने देखा था पहली लाइन में, कर्ता 2 प्रकार है, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता, और अर्थकर्ता अर्थात भगवान महावीर है। तो भगवान महावीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सब पूरा ही प्ररूपण कर चुके। अब ग्रंथकर्ता की प्ररूपणा करते हैं। एक सौ सात पर पहले अर्थकर्ता की बात की, अभी यहां ग्रंथकर्ता को बताने। शंका, वचन के बिना अर्थ का व्याख्यान संभव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों की संज्ञा अर्थात संकेत द्वारा प्ररूपणा नहीं बन सकती। क्या कहते हैं, जब किसी चीज को समझाना है तो वचन के द्वारा उसको समझाना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अर्थ का यानी पदार्थ का जो है या कुछ हमें जो कहना है उसका अर्थभाषित नहीं होता, उसकी वचन के बिना उसकी संभावना उसकी संभव उसका नहीं है। यदि कहा जाए कि अनक्षरात्मक ध्वनि द्वारा अर्थ की प्ररूपणा हो सकती है सो यह भी योग्य नहीं है। ये शंकाकार की सब शंकाएं चल रही है, उसका कहना है जो सूक्ष्म पदार्थ है वो किसी शब्दों द्वारा, किसी चिन्ह द्वारा, किसी संकेत द्वारा नहीं समझा सकते उसको। और यदि वो स्वयं ही प्रश्न उठा रहे अभी कि यदि कहा जाए अनक्षरात्मक ध्वनि द्वारा, ये कौन से ध्वनि को ये बताना चाहते हैं? दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक है ना, तो अनक्षरात्मक ध्वनि द्वारा अर्थ की प्ररूपणा हो सकती है, सो यह भी योग्य नहीं है, क्योंकि अनक्षर भाषा युक्त तिर्यंचों को छोड़कर अन्य जीवों को उससे अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। तिर्यंचों में तो अनक्षरी भाषा पाई जाती है, उन्हें छोड़कर अन्यों को तो ऐसी कोई भाषा से कोई ज्ञान नहीं होता है। और दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक ही हो सो भी नहीं है। और फिर दोबारा ये भी कहता है वो अनक्षरात्मक ही है, ही लगाया, मात्र अनक्षरात्मक ही ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वह 18 भाषा एवं 700 उपभाषा स्वरूप है। हमने पहले दिव्य ध्वनि का स्वरूप देखा था, 800 तो ये 18 तो महाभाषा है और 700 तो लघु भाषा है। इसी कारण चूंकि अर्थ का प्ररूपक ही ग्रंथ का प्ररूपक होता है, अतः ग्रंथकर्ता की प्ररूपणा नहीं करना चाहिए। इनको ये बताना है आपने भगवान महावीर को तो अर्थकर्ता बताया है, और अभी ग्रंथकर्ता के रूप में गणधर या अन्य आचार्यों को जो किसी को गणधरों को कहेंगे, तो वचन तो भगवान के भी थे, तो उन्हीं को अर्थकर्ता कहो और उन्हीं को ग्रंथकर्ता कहो। उन्होंने ग्रंथ लिखे या ग्रंथ कहे, लिखेंगे तो नहीं, उन्होंने कहे ऐसे क्यों नहीं कहते? ग्रंथकर्ता के लिए अन्य का नाम क्यों ले रहे हो? ये उसकी शंका चल रही है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संक्षिप्त शब्द रचना से सहित व अनंत अर्थों के ज्ञान के हेतुभूत अनेक चिन्हों से संयुक्त बीज पद कहलाता है। बीज पद किसको कहलाते हैं, कहते हैं? हाँ, तो ये चिन्ह वाला, कोई चिन्ह है उसको बीज पद कहलाते हैं। अनेक चिन्हों से संयुक्त लिखा ना, वो चिन्ह क्या है उसको भी देखते हैं। और उस चिन्ह के द्वारा क्या होता है? अनंत अर्थों का ज्ञान होता है। इसलिए कहा कि अनंत अर्थों का ज्ञान होने में जो हेतु है, जो कारण है, ऐसे जो चिन्ह है उसको बीज पद कहते हैं। और कैसे है? संक्षिप्त शब्द रचना से सहित मिनिमम शब्दों में उसकी रचना की जाती है, इसको यहाँ पद कहा है। देखो चिन्ह क्यों कहा? जैसे अ स्वर है, अ तो अ के लिए कैसा चिन्ह होता है? तो आप कहेंगे गुजराती अ निकाल के दिखाएंगे, हम मराठी वाले मराठी में लिखेंगे अ। अब ये तमिल वगैरह उनमें भी अ स्वर तो होगा। अभी कोई अंग्रेजी लोगों को तो अ या अ के लिए यू लिखेंगे या ए लिखेंगे, जो कुछ है, कहीं कहीं यू भी लिखते हैं ना, यू का भी उच्चार अ करते हैं वो, जैसे अगली है तो यू यू करते हैं। तो ये उसके चिन्ह हुए जिसको हम लिपि कहते हैं। कोई देवनागरी है, अब ये गुजराती की लिपि अलग है, वो साउथ इंडियंस वालों की वो लिपि अलग होती है, उसको लिपि कहते हैं। तो ये उसका चिन्ह हुआ, क्योंकि स्वर और व्यंजन तो वही है ना, क को तो क ही कहेंगे, हम भी कहेंगे और वो अमेरिकन वाले भी क कहेंगे, परंतु उसके लिए उनका चिन्ह अलग है, हमारा चिन्ह अलग है, हमारी लिपि अलग है, उनकी लिपि अलग है, ये चिन्ह कहलाएंगे हम उसको। तो बीज पद में क्या है? अनेक चिन्ह होते हैं, अनेक अक्षरों का एक बीज पद है, परंतु उस बीज पदों के द्वारा अनंत अर्थों का ज्ञान हो सकता है। हमने देखा था वो बीज ज्ञान वाले, बीज बुद्धि को भी देखा था, पद के द्वारा इतना सारा उनके ख्याल में आता है, एक चिन्ह देखा और पूरा ही उनके ज्ञान ने ग्रहण कर लिया। देखो 18 भाषा व 700 कुभाषा स्वरूप द्वादशांगात्मक उन अनेक बीज पदों का प्ररूपक अर्थकर्ता है। ये अर्थकर्ता ने क्या कहा? बीज पदों का प्ररूपक है, और उसी में से वो 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा वगैरह सारे निकल गए। तथा बीज पदों में लीन अर्थ के प्ररूपक, बीज पदों के द्वारा जो अर्थ ख्याल में आता है, जो प्ररूपित किया जाता है, उसके प्ररूपक कौन है? बीज पदों के प्ररूपक तो अर्थ करता है भगवान महावीर। अब वो बीज पदों के द्वारा जो ज्ञान हुआ है उसके प्ररूपक कौन है? तो 12 अंगों के कर्ता गणधर भट्टारक ग्रंथ करता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। अभिप्राय यह है कि बीज पदों का जो व्याख्याता है वह ग्रंथकर्ता कहलाता है। उसका व्याख्याता ने उस बीज पद के द्वारा अर्थों को समझाने वाले, वो बीज पदों के व्याख्याता कहलाए। शंका, उक्त कर्ता की प्ररूपना किस लिए की जाती है? भगवान महावीर की तो प्ररूपना कर दी, अब ये गणधरों के द्वारा ये द्वादशांग रचे गए उनकी बात कहने की क्या जरूरत थी? समाधान, ग्रंथ की प्रमाणता को बताने के लिए कर्ता की प्ररूपणा की जाती है। ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वे प्रमाण है, भगवान की वाणी से चले आ रहे हैं, तो उस प्रमाणता को बताने के लिए, वो स्टैंडर्ड है, सही है, तो उसको बताने के लिए एक कर्ता उसके कौन है, किन्होंने उसकी रचना की है, ये बात बताई जाती है। राग द्वेष व मोह से युक्त जीव यथोक्त अर्थों का प्ररूपक नहीं हो सकता। यथोक्त ने जैसे बताया है वैसा, जैसे भगवान ने बताया है वैसा यथोक्त अर्थों का प्ररूपक नहीं हो सकता। कौन? राग द्वेष और मोह से युक्त जीव, क्योंकि उसमें सत्य वचन के नियम का अभाव है। कोई एकाध बात सत्य भी कहे मगर वो ऐसा उसका नियम नहीं, वो सत्य ही बोले, राग के वश, द्वेष से वश, मोह अज्ञान के वश भी वो गलत बात, असत्य बात भी कह सकता है, इसलिए उसको सत्य का नियम नहीं हो सकता। इसी कारण उसकी प्ररूपणा की जाती है वह इस प्रकार। अब ये गणधर ही कैसे राग द्वेष मोह से रहित है उसकी यहाँ प्ररूपणा करेंगे। पहले भगवान को बताया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भगवान का स्वरूप बताया और उनके वचन सत्य कैसे वो बताया। अब उनके वचन सुनकर ग्रंथ, ये जो द्वादशांग की रचना हुई, 12 अंगों की रचना गणधर ने की, तो गणधर भी यदि मोही रागी द्वेषी होते तो उसमें गड़बड़ हो जाती, वहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती, तभी इसलिए यहाँ गणधरों का स्वरूप बताएंगे, गणधर कैसे होते हैं उसका स्वरूप यहाँ बताए। अब कहते वह इस प्रकार है, 5 महाव्रतों के धारक, यानी 5 महाव्रत, ये भी मुनि होना चाहिए ना, गणधर कोई अन्य कोई आए मैं गणधर हो जाऊंगा ये नहीं हो सकता। 5 महाव्रतों के धारक, 3 गुप्तियों से रक्षित, 5 समितियों से युक्त, ये मुनियों का ही स्वरूप चले, महाव्रत है, गुप्ति है, समिति है, यानी 13 प्रकार का चारित्र बता दिया यहाँ, ये सुना है ना, 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, इसको कहते 13 प्रकार के चारित्र से युक्त। 8 मदों से रहित, 7 भयों से मुक्त, ये केवल बाह्य में व्रत अंगीकार की ऐसी बात नहीं है, वो सम्यक तो सहित है, इसलिए 8 मद रहित और 7 भय से रहित कहा। अब उनके ज्ञान कैसा है, तो कहते बीज कोष्ठ पदानुसारी व संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धियों से उपलक्षित, उपलक्षित यानी ये लक्षणों से युक्त। ये हमने 4 प्रकार की बुद्धि देखी थी, रिद्धियों में हमने देखा था उसका नाम, बीज बुद्धि वाले, कोष्ठ बुद्धि वाले, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व, इसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। ऐसे बुद्धियों के धारी है वे, प्रत्यक्षभूत उत्कृष्ट अवधित ज्ञान से असंख्यात लोकमात्र काल में अतीत अनागत एवं वर्तमान परमाणु पर्यंत, क्या कहते हैं ये कैसे है, उत्कृष्ट अवधित ज्ञान के धारी है। उत्कृष्ट अवधित ज्ञान का नाम क्या है? सर्वावधि है, तो ये सर्वावधि ज्ञान से कितने काल तक जानते हैं, असंख्यात लोग उसमें, क्षेत्र में भी असंख्यात लोग देखा था हमने और काल में भी, है ना। तो असंख्यात लोक मात्र काल में अतीत अनागत एवं वर्तमान, अभी उनका द्रव्य कितना है सर्वावधि का, परमाणु को जानते, परमाणु तक को जानते, सर्वावधि का देखा था ना हमने। तो परमाणु पर्यंत समस्त मूर्त द्रव्य, समस्त ही लिए ना उसमें अभी, जो परमाणु को जानते तो पूरे वो लोकाकाश वाले स्कंद को जानेंगे ना, महास्कंद को, उसमें कोई नवाई नहीं है। तो समस्त मूर्त द्रव्य वह उनकी पर्यायों को जानने वाले, यानी इस लोक में जितने पुद्गल है उन सबको जानने वाले, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा। आगे तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मलमूत्र रहित, ये हमने अलग अलग रिद्धियों के नाम पहले देखे थे। तो तप्त तप रिद्धि के द्वारा मलमूत्र से रहित होते हैं। दीप्त तप लब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, क्या कहते हैं वो दीप्ति तप है लब्धि, और सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी, उपवास ही चलता है उनके, फिर भी शरीर के तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले। ये कोई मानते हैं ना कि क्या करे, अभी महावीर का निर्वाण आ गया तो वो भी स्वयं ग्लानी हो गई उनके, और वो लेटे और वो गंधर्व को बुलाया, उसको दुख हो रहा था, ये ऐसी ये तो चलती रहती है। एक बार वो पढ़ा के दिखाया था मैंने, हाँ वो लंबे भेजा, उसको दुख हो रहा था, वो सहन नहीं कर सकेगा। ये ना मुनि का स्वरूप मालूम है ना भगवान का मालूम है, इसलिए ये ऐसी बातें चलती है। ये राग से रचना होती है ना उसको, ये करके असत्य रचना क्यों होती है, राग द्वेष और मोह के कारण, अज्ञान के कारण, राग के कारण ऐसी रचनाएं होती है। जैसे हम अपन स्वयं को जो इसे करते ना, हम वृद्ध काल में हम स्वयं कमजोर हो जाते हैं और हमें लगता है हमारे बच्चे अभी रोएंगे तो हमारा मरण आएगा, तो उनको दूर भेजते हैं। ऐसी बातें मुनियों के और भगवान के बारे में वो भी सोचते हैं। अपने माप से भगवान को मापते क्या करें। ऐसा एक लेख हमारे वो, ये तो मान्यता मेरे ख्याल से श्वेतांबरियों में चलती है, परंतु दिगंबर मैगजीन में एक जैन बोधक नाम के उसमें आया था छपकर, ट्रांसलेशन करके किसी ने भेजा और इन्होंने छप दिया। उन्होंने बोला कि महावीर के बारे में ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला रहे, आपके अक्कल के क्या हो। तो ये पूरा ही फिर उसको किसी ने मुझे बताया, हम तो वो मैगजीन लेते भी नहीं है, तो ये ऐसा ऐसा छपके ये सही है क्या। तो उसके एक एक वाक्य में तीन तीन गलतियां थी जो कुछ थी मान्यता के, तो फिर वो सब उसको लिख के देते, उसने वो सब भेजा था उसको पत्र व्यवहार करके, छापने को तैयार नहीं हुए वो, कुछ ना कुछ बहाने बना के टाल दिया, क्या करें। यानी ये अज्ञान और मिथ्यात्व ऐसे फैलाते हैं ज्यादा, और स्वयं अभ्यास ही नहीं है, और मैगजीन चलाने का तो शौक है, और उन्हें अज्ञान फैलने का दुख नहीं है, और ना ही अपना स्वयं को अज्ञान मिटाना चाहते हैं, उनको तो मैगजीन की पड़ी है। ये 25-30 साल पहले की बात है, ये कोई मैगजीन चलाने वाले आपके, वो डोंबिवली के मराठी मैगजीन चलता है, अभी नाम नहीं देखे आपको समझ जाना, तो वो आए थे यहाँ, हमने बोला आपके मैगजीन में हम पढ़ कभी देखते हैं, तो वहाँ लिखा था रजनीश की दृष्टि में भगवान महावीर। उन्हें बोला आपको रजनीश चलते हैं और कांजी स्वामी नहीं चलते हैं, आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि भगवान महावीर की दृष्टि में मैं कौन हूँ। अरे हमारी दृष्टि में भगवान हो तो हम अपनी दृष्टि से लिखेंगे ना, जो गलत दृष्टि से ही उसका भी कथन करेंगे, तो आपको कांजी स्वामी का क्यों नहीं चलता। तो एक ही वाक्य में उन्होंने उत्तर दिया, हमको मैगजीन चलाना है। हमने बोला हो गया कल्याण आपका। कितनी बात, यानी समझती बात नहीं है, ऐसी नहीं है, नहीं वो तो मुनि का स्वरूप आप नष्ट कर देंगे। हमने बोला आपके पास सोना नहीं है तो पीतल के गहने पहनकर आपको मैंने सोना पहना, ऐसा ही हो चला है। आजकल मुनि नहीं है, जो है उसको मुनि मानो, ये तो कोई बात हो नहीं सकती। चलो ये तो अपना विषय रह गया, समय हो चुका, कल ये इसको फिर दोबारा लेते हैं। ये गणधर का स्वरूप कैसा है।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो धो।
अश्विन भाई